ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಜೋ ಸಬ್ಕಾ ಪರಿಚಯ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಸಬ್ಕಿ ಪಹಚಾನ್ ಕರಾನೆ ವಾಲೆ ಖುದ್ ಅಪ್ನಿ ಪಹಚಾನ್ ಲಿಯೆ ಐಸಿ ಹಮಾರಿ ಮಿಥಿ ಆದರಣೀಯ ಇಂದಿರಾ ಬೆನ್ ಜಿ ಜಿನ್ಗೆ ಲಿಯೆ ಇತನಾ ಕಹೂ ಸಿತಾರೆ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಪೂಛೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಚಮಕ್ ಆಪ್ಕಿ ಬಾಗ್ ಮೇ ಜಾಕೆ ಫೂಲ್ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಪೂಛು ಖುಷ್ಬೂ ಕ್ಯಾ ಹೇ ತೇರಿ ಖುದ್ ಹಿ ಅಪ್ನಿ ಖುಷ್ಬೂ ಕೋ ಲಿಯೆ ಖುದ್ ಸಮಾಯಿ ಥೆ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಮೇ ಐಸಾ ಜೀವನ್ ಆಪ್ನೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಕಿಯಾ ಹೇ ಬಾಬಾ ಕೋ ಔರ್ ಯಜ್ಞ ಕೋ ಪರಿಚಯ ತೋ ಕ್ಯಾ ದೂ ಇತನಾ ನಹೀ ಹೇ ಮುಝೆ ಪರ್ ಇತನಾ ಕಹೋ ಆಪ್ಕೆ ನಾಮ್ ಮೇ ಹಿ ಆಪ್ಕಾ ಪರಿಚಯ ಸಮಾಹಿತ ಹೇ ಸರಸ್ವತಿ ಹೇ ಆಪ್ಕೆ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ರೂಹಾನಿಯತ್ ಹೇ ಆಪ್ಕೆ ನಯನೋ ಮೇ ಯಹಿ ಕಾಫಿ ಹೇ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಬೆಂಜಿ ವೈಸೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಗ್ಪುರ್ ಸೆ ಹೇ ಔರ್ 98 ಮೇ ಶಾಯದ್ ಆಪ್ ಯಜ್ಞ ಮೇ ಮಧುಬನ್ ಯಜ್ಞ ಮೇ ಆಯೆ ಹೇ ಇತನಾ ಹಿ ಮುಝೆ ಪರಿಚಯ ಹೇ ಔರ್ ರೋಜ್ ಹಮ್ ದೇಖ ರಹೆ ಹೇ ಸಬ್ಕಾ ಇತನಾ ವಿಸ್ತಾರ ಸೆ ಪರಿಚಯ ಸುನಾನೆ ವಾಲೆ ಆಜ್ ಏಕ್ ಸುಂದರ ವಿಷಯ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಪಧಾರೆ ಹೇ ಏಕ್ ಹಾಥ್ ಕಿ ತಾಲಿ ಸೆ ಹಮ್ ಇಂದಿರಾ ಬೆನ್ ಜಿ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಔರ್ ಆಜ್ ಕಾ ವಿಷಯ ಸಬ್ಕೋ ಪತಾ ಹೇ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೇ ಆ ಹಾ ತೀನ್ ದಿನ ಪಹಲೆ ಗಯಾ ಹೋ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ತ್ಯೋಹಾರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾ ತೋ ಪುನಃ ಏಕ ಬಾರ್ ರೂಹಾನಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಿ ಓರ್ ಚಲೆ ಔರ್ ವಿಷಯ ಪರ್ ಪ್ರಕಾಶ ಡಾಲ್ತೆ ಹುಯೆ ಸುನೆಂಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಕಾಲಿಯಾ ಮರ್ದನ್ ವಾಲಾ ಡಾನ್ಸ್ ಕೌನ್ ಸಾ ವೋ ಡಾನ್ಸ್ ಹೇ ತೋ ಮನ್ ಸೆ ಭೀ ಕರಾಯೆಂಗಿ ಬೆನ್ ಜಿ ಔರ್ ಹಮೇ ಉನ್ ತಕ್ ಲೇ ಜಾಯೆಂಗೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಹಮ್ ಸಬ್ ಪಿಛಲೆ ತೀನ್ ಚಾರ್ ದಿನ ಸೆ ಭಟ್ಟಿ ಮೇ ಬೈಠೆ ಹೈ ಜಿಸ್ ಭಟ್ಟಿ ಕಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೈ ಚಲೋ ಸಂಪನ್ನತಾ ಕಿ ಓರ್ ಹಮೇ ಕ್ಯಾ ಬನ್ನಾ ಹೈ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬನ್ನಾ ಹೈ ಔರ್ ಹಮಾರೇ ಬಾಬಾ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಸಂಪನ್ನ ಔರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬನೆ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಹಮ್ ದೂಸರೆ ಶಬ್ದೋ ಮೇ ಕಹ ದೇತೆ ಹೈ ಹಮೇ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಬನ್ನಾ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಬಾಪ್ ಹಮಾರೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಪ್ ಜೋ ಹೈ ಜಿನ್ಕೆ ಸಮಾನ ಬನ್ನೆ ಕಿ ಹಮಾರಿ ಭೀ ಸುಂದರ ಸಿ ಇಚ್ಛಾ ಹೈ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೈ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಹೈ ಜಬ್ ಪಹಲೆ ಹಿ ದಿನ ಇಸ್ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇ ಆತೆ ಹೈ ತೋ ಹಮೇ ಬತಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಮಾನವ ಸೆ ದೇವ ಬನ್ನಾ ಹೈ ಔರ್ ಫಿರ್ ಬಾಬಾ ಹಮೇ ಕಹತೆ ಹೈ ತುಮ್ ಸಾಧಾರಣ ನಹೀ ಹೋ ತುಮ್ ತೋ ಮೇರೆ ಹೋ ವನಹಾರ ದೇವತಾಯೆ ಹೋ ತೋ ವೋ ಜೋ ದೇವತಾಯೆ ಹೈ ಉನ್ ಸಬ್ಸೆ ಉನ್ಮೇ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲಾ ನಂಬರ್ ಕಿಸ್ನೆ ಲಿಯಾ ಹೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಕಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯುಗ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಬನ್ ಜಾಯೆಗಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಔರ್ ಜಿಸ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿ ವೋ ಸತ್ಯುಗ ಕೃಷ್ಣ ಪುರಿ ಭೀ ಕಹಲಾಯೆಗಾ ಔರ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸೆ ಹಿ ವಿಶೇಷ ಕರ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಮಾತಾಓ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಹೋತಿ ಹೈ ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಮೇ ಜಾನೆ ಕಿ ಐಸೆ ಸಭಿ ಕಿ ಹೋತಿ ಹೈ ಪರ್ ಖಾಸ್ ಮಾತಾಓ ಕೆ ಲಿಯೆ ವರ್ಣನ ಆತಾ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಭೀ ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಮೇ ಜಾಯೆ ಹಮ್ ಭೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಸಾಥ್ ಖೇಲ್ ಪಾಲ್ ಕರೆ ತೋ ಯೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೊ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಬನೆ ತೋ ಕೈಸೆ ಬನೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ತೋ ಹಮನೆ ಜೆಸೆ ಕಹಾ ಕಿ ತೀನ್ ದಿನ ಪಹಲೆ ಆಪ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಕಿ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಹಿ ಉಸೇ ದಿನ ಹುವಾ ಹೈ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही भक्ति में तो खूब नारे लगते हैं, बहुत सारे नारे लगाते हैं। क्या क्या गाते हैं बोलो? नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो नंद के घर आनंद भयो है ना, कि जिसके आने से ही आनंद छा गया है सब और। तो वो नंद जिसके आने से ही आनंद छा जाता है, हमें भी वैसा ही बनना है। और वो नंद जिसके आने से ही आनंद छा गया, तो वो जब जन्मा है वो नंद, वो कृष्ण नंद तो पिता का नाम है, नंद के घर आनंद भयो क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो वो जो श्री कृष्ण बताते हैं, जो नंद के घर पैदा हुए हैं और आनंद छा गया है, वो श्री कृष्ण कौन से वर्ण वाले हैं? श्याम वर्ण वाले हैं, गौर वर्ण वाले नहीं है, श्याम वर्ण वाले हैं। और इसलिए वो जो श्याम वर्ण वाले कृष्ण है, बचपन से ही उसके पीछे नेगेटिविटीज का वार होता रहा, एक के बाद एक। एक पहले पूतना, अभी छोटा सा ये दूध पीता बच्चा है, तो पूतना उस पर वार कर रही है, तो एक के बाद एक उसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो बखूबी उनको परास्त करता है। कोई टेंशन में नहीं आता है, कोई चिंता में नहीं आता है, कोई घबराता नहीं है, लेकिन खुशी खुशी से अपनी स्थिति को ऊंचा रखते हुए, खुशनुमा स्थिति में रह के वो आनंद को रेडिएट करते हुए इन निगेटिविटीज को, या जिसको कहें कि असुरों का वध करता है। तो क्या क्या नहीं आया उसके जीवन में, बहुत कुछ बातें आई, लेकिन आज हम विशेष कौन सी बात को लेंगे? कालिया मर्दन की बात लेंगे। ये भी एक लीला थी। तो हमको बाबा ने क्या कहा है कि श्री कृष्ण का एक नाम है श्याम सुंदर। और वो नाम क्यों पड़ा है श्री कृष्ण का ऐसा वाला, कि श्री कृष्ण पहले श्याम फिर सुंदर बने, और ये चक्र चलता ही रहता है। श्याम बनते हैं, सुंदर बनते हैं, फिर श्याम बनते हैं, फिर सुंदर बनते हैं, फिर श्याम बनते हैं, फिर सुंदर बनते हैं, यही बताया ना बाबा ने। तो श्याम क्यों बनते हैं और सुंदर कैसे बनते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। तो जैसे हमारे जीवन में जब बाबा आते, क्योंकि ये जो कालिया मर्दन कृष्ण के द्वारा किया गया है, क्या वो अकेला कृष्ण है जिसने वो किया है? जैसे बाबा कहते हैं ना कि क्या वो अकेला अर्जुन था जिसको श्री कृष्ण ने, मतलब भक्ति मार्ग के हिसाब से, क्या अकेले कृष्ण को वो गीता सुनाई गई है? नहीं, वो तो स्टोरी जब बनाएंगे तो उसमें एक दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में बाबा कहते आप सब वो अर्जुन हैं जो भगवान से सच्ची गीता सुन रहे हैं, और उसी का यादगार भक्ति में इस रूप में दिखाया कि गीता का ज्ञान कौन सुन रहा है? एक अर्जुन सुन रहा है, परंतु है तो हम सब अर्जुन। ऐसे ही क्या सिर्फ एक कृष्ण ने कालिया मर्दन किया? बेशक बाबा कहते हैं कि जो लक्ष्मी, श्री कृष्ण, श्री राधे हैं, वो कोई एक ही आत्मा बनेगी ना, हम सब तो नहीं बनेंगे। हम सब बेशक देवी देवता बनेंगे, परंतु वो तो सीट रिजर्व हो चुकी है, लेकिन हम उनके समान तो बनेंगे ना, उनके सखा तो बनेंगे ना। तो हमें भी तो वही कालिया मर्दन वाली डांस करनी पड़ेगी ना, है कि नहीं? तो इसीलिए ये समझना होगा श्याम सुंदर को, कि जब उसका जन्म हुआ है तो श्याम वर्ण का है, और जन्मते ही माँ यशोदा ने सिर पर मोर मुकुट लगाया है, और हम सभी जानते हैं पंख मोर का, मोर मुकुट किसका प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक है। और क्या कहा, श्याम वर्ण वाला कृष्ण है वो। तो ये कौन है? हम जब बाबा के पास आते हैं, आत्मा कैसी है? काली है या सांवली? बाबा कहते ना, है तो काली पर तुम्हारी लाज रखने के लिए मैं सांवला शब्द यूज करता हूं। कहता है ना बाबा, तो बाबा शब्द जो सांवला यूज करता है वो लाज रखने के लिए, वरना तो तुम काले हो गए हो। लेकिन हाँ, एकदम से काले हम अभी बने हैं, क्योंकि हम कलयुग के एंड में आकर बाबा को मिलते हैं। लेकिन हम सांवले कब से होना शुरू हो गई थी आत्मा? द्वापर युग से शुरू हो गया था आत्मा का सांवला होना, और वो सांवली होते 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 कलयुग के अंत तक काली हो गई। लेकिन बाबा को थोड़ी हमारी इज्जत है, हमारी लाज नहीं गवाता है, तो कहता है तुम सांवले हो। तो ऐसी सांवली आत्मा जब बाबा के पास आती है, हम ब्राह्मण बनते हैं, हमारा ईश्वरीय जन्म होता है। जन्मते ही हमें दो वरदान मिलते हैं, कौन से बताओ? जो हम सब स्लोगन कहीं ना कहीं कार्ड में अपने सेंटर के गेट के सामने लिखते रहते हैं या बैनरों में लिखते हैं, योगी भव पवित्र भव। तो श्याम वर्ण वाला कृष्ण है, मतलब प्योर आत्मा नहीं है अभी, एक इम्प्योर आत्मा की कहानी है। कि वो इम्प्योर आत्मा जो बाबा के पास आ गई है और अब प्योरिटी के पथ का अनुसरण करना आरंभ कर दिया है, तो हम सब भी वही कृष्ण हैं। लेकिन कृष्ण बनने जाएंगे अभी, क्योंकि कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, अभी तो ब्रह्मा कहला रहा है ना। लेकिन यही वो आत्मा होगी जो आगे जाकर कृष्ण बनेगी। तो ऐसे ही हम ही आत्मा जाके देवता बनेंगे आगे। तो भले हमारा टाइटल कृष्ण नहीं, पर कृष्ण भी तो एक देवता है और हम भी तो देवता ही बनने जा रहे हैं। तो ये हमारी भी कहानी है, अकेले श्री कृष्ण की कहानी नहीं है। कि जब आत्मा सांवली काली हो गई है, तब हम बाबा के पास आए हैं और बाबा ने हमें ज्ञान दिया और हम पवित्रता के मार्ग पर चल पड़े। बाबा ने कहा और पूरे कल्प की कहानी दी, हमें आत्मज्ञान दिया, हमें खुद का परमात्म ज्ञान दिया, हमें पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, हमें कर्मों का ज्ञान दिया, आत्मा की प्यूरिफिकेशन का ज्ञान दिया, है ना? कि कैसे ये आत्मा पूरे कल्प में चक्र लगाकर पहले उतरी थी परम धाम से, तो कैसी थी आत्मा? एकदम प्योर, जैसे सोना 116 कैरेट वाला होता है, तो उसको क्या कहते हैं? 100% प्योर, जिसमें किसी भी प्रकार की अंश मात्र भी, कोई एलॉय, कोई मिलावट नहीं है। ऐसी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट अपना पवित्र प्रकाश फैलाते हुए इस धरती पर आई, मां के गर्भ में गई और सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करना आरंभ किया। आई तो थी 100% प्योर, लेकिन जैसे ही शरीर धारण करके पार्ट प्ले करना शुरू किया, गिरती कला आरंभ हो गई। भले उस समय उस आत्मा को ये ज्ञान नहीं है कि मैं गिरती कला में जा रही हूं, वो तो संगम ही एक ऐसा युग है जहां में तीनों कालों का ज्ञान है, कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या बनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ संगम युग की देन है। सतयुग में जाके तो ये पूरा चक्र याद भी नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली सतयुग में हम अपनी यात्रा जो शुरू करेंगे 100% प्यूरिटी के साथ आरंभ करेंगे। लेकिन जैसे ही यात्रा आरंभ होगी, हमारी प्यूरिटी का परसेंटेज गिरना आरंभ हो जाएगा, लेकिन वो इतना स्लो स्लो प्यूरिटी का लेवल कम होगा कि सतयुग में हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी प्योरिटी कुछ कम हुई है। और इसीलिए सतयुग के हर देवी देवता का वर्णन 16 कला संपूर्ण। कभी सुना आपने 15 कला वाला देवता? जबकि अगर गिनती नीचे करनी है तो 16 के बाद एकदम 14 आता है क्या? आता है क्या 14? बीच में क्या आता है? 15 आता है। परंतु वो इतना स्लो, इतना धीरे धीरे वो कम होती है पवित्रता, कि एहसास ही नहीं होता है कि कम हुआ है। जैसे पूनम का चांद हो, अगर आज मैं उसको कल भी देख लिया होता तो मुझे लगता शायद आज है क्या पूनम का चांद, और चाहे कल भी देख लूंगी तो लगेगा आज है क्या पूनम का चांद। लेकिन अगर 2-3 दिन पहले देखूं या 2-3 दिन बाद देखूं तो नहीं नहीं वो दिखता नहीं है क्या, थोड़ा सा खाली है, ऐसे बोलेंगे ना। तो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण जरूर है, लेकिन धीरे धीरे उतरती कला है, पर 15 में आते आते वो एहसास नहीं है, वो इतना विजिबिलिटी नहीं है उसकी, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ता है कि कम हुआ है। और इसीलिए कभी 15 कला वाले देवता का गायन कोई नहीं है। लेकिन जब त्रेता में आ जाते तब विजिबिलिटी आती, और तब तक 2 कला कम हो जाती है, और इसलिए हम कहते हैं 14 कला। तो बेशक हमारी कला कम हुई है, लेकिन हमारे में अभी इम्प्यूरिटी नहीं आई है। प्योरिटी का लेवल जरूर कम हो रहा है, लेकिन इम्प्यूरिटी नहीं आई। तो उस समय आत्मा गौर वर्ण की कहेंगे, पूरी प्योर एकदम चमक रही है, कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं है, लेकिन उस गौर वर्ण का जो परसेंटेज है, जैसे दुनिया में भी देखो ना, लोग तो बहुत लोग गोरे होते हैं, लेकिन 2 गोरे खड़े, ये ज्यादा गोरा ये कम गोरा है, होता है नहीं होता है? 4-5 गोरे लोगों की गिनती में जो गिने जाते और खड़े कर दो, अंतर महसूस होता है नहीं होता है? इवन जिसको सांवला कहते हो उन 4-5 को खड़ा कर दो, अंतर दिखेगा ना। तो गौर वर्ण हमारा तब भी है, लेकिन जो पहले जन्म में है उससे थोड़ा कम 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 होते हुए 2 युग के बाद वो जाके श्याम वर्ण बन जाता है। क्यों? वहां पे कहां से इम्प्यूरिटी आई? श्याम वर्ण माना ही जहां इम्प्यूरिटी ने प्रवेश किया है। कहां से आ गई इम्प्यूरिटी? वहां पे प्रश्न उठता है ना कि हमने ऐसे कुछ कर्म तो वहां किए नहीं, सिर्फ संगम में जो कमाई की वो हमने वहां पर उसकी प्रारब्ध के रूप में उसको भोगा है, बुरा तो हमने कुछ भी नहीं किया है, तो फिर हमारे में इम्प्यूरिटी कैसे आ गई, कैसे हम गौर से श्याम बन गए? तो हुआ क्या, संगम में हमने मेहनत की, किस चीज की? जब बाबा के पास आए तो शुद्र थे, श्याम वर्ण के थे, काले वर्ण के लेकिन श्याम वर्ण के तो शुद्र थे। फिर बाबा ने हमें गाइडेंस दी, ब्राह्मण जन्म हुआ बाबा की गोद में, और हम ब्राह्मण बने और ब्राह्मण जैसे ही बने तो ज्ञान मिला तुम आत्मा हो देह नहीं हो। तो पहले हम देह अभिमानी स्थिति में रहते थे और अभी ब्राह्मण बनने के बाद देही अभिमानी स्थिति में रहते नहीं है, रहने का पुरुषार्थ करते हैं। सच है नहीं? ये हमें सिखाया गया है कि अभी आपको रहना है, लेकिन कितनी सफलता, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं उस पर मदार है सारा। तो उस पर जो सारा मदार है, तो बेशक हर ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहा है और उस पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए इस भट्टी जैसे प्रोग्राम का हम आयोजन करते हैं। क्योंकि एक होता है कि सूर्य की लाइट है, पड़ रही है सब जगह, रास्ते में कागज बिखरे पड़े हैं, जलते नहीं हैं, लेकिन लेंस रखो उसके ऊपर, सूर्य की किरणों को उस पर फोकस करो, कागज जल जाता है। ऐसे ही मंद मंद हवा चल रही है, हवा तो है ना, एकदम नहीं है ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, लेकिन कागज के टुकड़े जहां पड़े हैं वैसे ही पड़े हैं। लेकिन अगर आंधी आ जाए तो कागज के टुकड़े तो क्या पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ कर होता है ना। तो ये भट्टी का आयोजन इसीलिए है कि ज्ञान और योग की आंधी, वहां तो जब हम रहते थे क्या कर रहे थे, हम एक क्लास मुरली क्लास सुन लिया, सवेरे योग कभी किया और कभी नहीं भी, है ना, सच्चाई है ये। कुछ कुछ होंगे जो नियम के पक्के होंगे, अन्यथा ऐसा होता है कभी कर लिया कभी मिस हो गया, होता है ना। और फिर मुरली क्लास भी, मुरली तो अवश्य नहीं मिस करते होंगे क्योंकि वो दिन भर में कभी भी पढ़ लेते, और अमृत वेला का तो टाइम मिस हो गया, पर मुरली का क्या है कि चलो अभी नहीं पढ़ी तो बाद में पढ़ ली, लेकिन वो करने के बाद भी फिर लौकिक जिम्मेवारियां भी तो निभा रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा डोज मिलता है फिर उसमें चले जाते हैं। तो वो ज्ञान भले सुना भी लेकिन वो आंधी का काम नहीं करता है, वो योग भले किया भी लेकिन वो लेंस वाला काम, लेकिन यहां पे जब भट्टी में आए तो क्या है, बस ज्ञान सुनते रहो और योग करते रहो, ज्ञान सुनते रहो और योग करते रहो। और उस ज्ञान जो सुन रहे हैं, जो योग कर रहे हैं, उसमें सफलता मिले उसके लिए कहा गया था मौन को धारण करें, उसके लिए कहा गया था अंतर्मुखी रहें। क्योंकि जब तक मौन नहीं धारण करेंगे, जब तक बाह्य मुक्ता से नहीं हटेंगे, जब तक अंतर्मुखी नहीं बनेंगे, अंदर जो इम्प्यूरिटी आई है ना द्वापर से, वो मिटा नहीं सकेंगे। तो यहां पे हम अभ्यास कर रहे हैं, तो रोज घरों में सेंटरों पे रहकर अभ्यास करते हैं, बीच बीच में ऐसे भट्टी सेंटरों पे भी रखती होंगी हमारी बहनें, और ये मधुबन के वातावरण में भी। तो इससे क्या होता है, जो हमारा अभ्यास है देही अभिमानी बनने का, सोल कॉन्शियस बनने का, उसमें थोड़ी सी परसेंटेज में वृद्धि होने लगती है, और वृद्धि होते 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 संगम भी खत्म हो जाएगा ना, तो वही हमारी फाइनल स्टेज होगी कि हमारा सोल कॉन्शियस स्टेज संपूर्णता पर पहुंचा। और फिर वही सत्युग में आएंगे तो नेचुरल, वहां सोचेंगे नहीं कि देह अलग है और आत्मा में अलग हूं, पर यहां जो अभ्यास किया वो नेचुरल, वहां अभ्यास नहीं चल रहा है लेकिन नेचुरल जी रहे हैं। कैसे, लट्टू खेला है बचपन में, लट्टू खेला है ना सभी ने, भौरा, भौरा होता है और रस्सी होती है, और ऐसे क्या बोलते हैं, बपेड़ो,
चाहे नाम कुछ भी दो लेकिन समझ गए ना। तो क्या होता है, वो
लपेटते हैं रस्सी को और चलाते। जब पहली बार चलाते तो अच्छा से चलता है, जो जिसने बहुत चलाया वो हमारे सामने चलाता, उसको देखते क्या बढ़िया चल रहा है, मैं भी चलाऊंगा ऐसे। हम प्रयास करते हैं तो उस प्रयास में थोड़ा सा अच्छा होता है, थोड़ा गिर जाता है, थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन हम मैं भी उसके जैसे चलाऊंगा जरूर, प्रयास को कंटिन्यू करते हैं। और एक दिन आता है हमारा भी भौरा इतना बढ़िया चलता है, और जब वो चलता है ना बढ़िया, वो इतना फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि चल रहा है, पता भी नहीं चलता कि वो चल रहा है, लेकिन चल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे अब उसकी स्पीड कम होते होते एक स्टेज पे आती है वो धीमी धीमापन, अब थोड़ा सा उसका लड़खड़ाना, वो धीरे होना दिखाई पड़ता है और उस धीरे के बाद लड़खड़ाना भी दिखाई पड़ता है, फिर गिर जाता है। तो ऐसे ही यहाँ तो हमने अभ्यास कर रहे हैं, एक दिन हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे, हम यहाँ से परमधाम चले जाएंगे और परमधाम से सतयुग में आ जाएंगे। तो जो यहाँ पे लट्टू खेला वहां पे अब ऑटोमेटिक चलता रहेगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा दो युग तक, लेकिन दो युग के बाद वो गिर पड़ेगा, मतलब सोल कॉन्शियस जीरो पे चली जाएगी। और अब द्वापर से बॉडी कॉन्शियस शुरू हो जाएगा। बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू हुआ इसका मतलब वो उस समय नहीं शुरू हुआ है, उसके बीच तो, क्योंकि ये सोल कॉन्शियस में हम जमे हुए थे, जिसे बहुत खुशबू के अंदर बदबू का एहसास नहीं होता है, लेकिन बीज आने लगेगा। कैसे? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस माना ही क्या, हम जब सतयुग में आएंगे तो क्या बॉडी नहीं देखेंगे क्या किसी की? पर भाव बहुत शुद्ध होंगे, इसीलिए तो हर अंग के लिए क्या कह दिया, कमल नयन मुख कमल। भावों में कोई भी अशुद्धि नहीं होगी, लेकिन वो रूप रंग, वो वस्तु वैभव, उन सब की इमेज अंदर तो रहेगी ना, आंखों के द्वारा तो सब कुछ जाएगा, कानों के द्वारा जो ध्वनियां सुनेंगे वो अंदर जाएगा, मुख के द्वारा जो भोजन खाएंगे उनकी टेस्ट की प्रिंट वहां रहेगी, नाक के द्वारा जो वहां की बढ़िया सी खुशबू लेंगे वो भी तो अंदर रहेगी, त्वचा के द्वारा जो स्पर्श वहां के अनुभव करेंगे वो सारे तो अंदर रहेंगे ना। तो जब तक सोल कॉन्शियस होगी वो कोई प्रभाव हमारे पर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस घड़ी सोल कॉन्शियस जीरो पे चला जाएगा, बॉडी कॉन्शियसनेस इमर्ज होगा। ये है इम्प्यूरिटी कैसे आई, हमने कुछ किया नहीं था बुरा, लेकिन फिर भी हमारे में इम्प्यूरिटी कैसे आई, हमारा प्रश्न रहता है ना। प्रिंट तो अंदर जा रहे हैं ना सारे, जो भी देखेंगे अंदर जाएगा, तो इम्प्यूरिटी वहां से आई। और फिर वहां से एक बार जो शुरू हुआ तो बढ़ता गया बढ़ता गया, जिसको बाबा ने कहा काले बन गए हो, पर फिर भी बाबा सांवला शब्द यूज करेगा कि श्याम, श्याम से। तो मैं क्या बता रही थी, कृष्ण की कहानी ना, तो कृष्ण जैसे कहा कि जन्मा है तो श्याम का वर्ण है, श्याम वर्ण है, और मोर मुकुट लगा दिया। तो ये जो कहानी है उस आत्मा की कहानी है जो पहले सांवली थी, मतलब शूद्र थी, और फिर बाबा के पास आई है और बाबा ने दो वरदान दे दिए, योगी भव पवित्र भव, वो मोर मुकुट दिखा दिया, और उस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, और धीरे धीरे ज्ञान योग के माध्यम से अंदर में बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण वस्तु वैभव की जो प्रिंट है, रूप रंग की जो प्रिंट है, और फिर जो अंतर में, पहले तो सिर्फ
हम रोल, हमको ये पता था हम रोल कर रहे हैं, हम एक्टर हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन द्वापर के बाद तो सोल कॉन्शियस जीरो माना, हम तो यही भूल गए कि हम कोई एक्टर है, हम तो इसको ही सब कुछ समझने लगे जबकि ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। तो फिर अंतर महसूस होने लगा। पहले तो क्या था, फिल्म में हर एक को रोल डिफरेंट मिलेगा तभी तो अच्छा लगेगा ना, लेकिन बाद में नहीं, वो मेरे से बड़ा क्यों है, मैं छोटा क्यों, उसके पास संपत्ति ज्यादा है मेरे पास कम क्यों, उसका बंगला अच्छा है मेरे पास क्यों, तो क्या होने लगा, कंपेरिजन, कॉम्पिटिशन, क्रिटिसिज्म। बाबा ने कहा ना, बॉडी कॉन्शियसनेस मूल है सभी विकारों का, तो उसके कारण अहंकार की, जैसे कहा ना वो क्यों बड़ा, हर एक को लगता है मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, अगला चाहे कितना भी श्रेष्ठ है पर उससे ज्यादा मैं हूं, अहंकार तो इसी को कहते हैं ना, अपने जैसा किसी को नहीं समझता है वो, इसी को बोलते हैं ना अहंकार। खुद थोड़े से पैसे क्या कमा लिए इसने, थोड़ी सी पोजीशन, अपने जैसा किसी को समझता ही नहीं है, जैसे कि वही सब कुछ है। तो अहंकार माना अपने जैसा नहीं, हर दूसरे को अपने से कम आंकना, और चूंकि मैं सबसे ऊंचा हूं इसलिए मैं जो कहूंगा मेरी वो बात जल्दी मान लीजिए, और अगर मानी तो ठीक, और नहीं मानी तो गुस्सा, नहीं तो गुस्सा, और अगर मान भी ली तो लोभ, फिर और चाहूंगा ना कि मेरे को और चाहिए और चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे अंदर विकारों की प्रिंट, विकार आने लगी। तो अब ये जो कालिया नाग दिखाया, दिखाया क्या उसने, कि गेंद खेल रहे हैं यमुना के तट पर, सखाओं के साथ गेंद खेल रहे हैं, खेलते खेलते गेंद कहाँ चली गई, और वो तो ये गेंद खेलना क्या है असल में, हाँ गेंद खेलना असल में क्या है, कि गेंद माना आत्मा का प्रतीक, पॉइंट ऑफ लाइट है ना, गेंद माना गोल, तो और खेलना माना कि सतयुग से परमधाम से उतरे, कौन सा गेम खेल रहे, क्योंकि गेम जो खेल रहे थे ना गेंद का, उसमें क्या था, थ्रो एंड कैच, थ्रो एंड कैच, थ्रो एंड कैच, मैं फेंक रहा हूँ कैच करो, मैं फेंक रहा हूँ आप कैच करो। तो ये वास्तव में किस बात का प्रतीक है, कि आत्मा आती है एक शरीर धारण करती है, फिर छोड़ती है, फिर दूसरा लेती है, फिर छोड़ती है, फिर दूसरा लेती है, फिर छोड़ती है, फिर दूसरा लेती है। तो ये गेम हमने खेला, और ये गेम खेलते खेलते गेंद वाला गेम, गेंद चला गया यमुना नदी में, और यमुना नदी में जाने का मतलब है आंखों से ओझल हो जाना। तो दो युगों तक तो सोल कॉन्शियस भले प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे पर नेचुरल तो थी ना वो, तो गेंद मतलब एहसास था, लेकिन द्वापर में आके वो पॉइंट ऑफ लाइट, मैं सोल हूं, वो टोटल ही हमारे बुद्धि से बात ओझल हो गई, गुम हो गई टोटली हमारी। और फिर गिरी भी तो कहां गिरी है, बोलते हैं यमुना नदी तो बहुत बड़ी है ना, तो यमुना नदी के भी उस घाट पर गिरी है जहां पर कालिया रहता था, जिसको नाम दिया था काली दह, और वो कालिया कितने फनों वाला था, सैकड़ों, सैकड़ों भी बोलते, क्योंकि कहानियां तो बनाई गई है ना प्रतीकों के रूप में, तो कहीं पांच बताते हैं, कहीं सैकड़ों बताते हैं, कहीं हजार भी, क्योंकि फिर कथाकारों ने धीरे धीरे अपने अनुसार भी क्या करना शुरू कर दिया, मोल्ड कर दिया, लेकिन शुरुआत तो द्वापर में लिखे गए ना, तो थोड़ा थोड़ा कथाकारों ने भी क्या कर दिया, थोड़ा सा बाबा कहते हैं ना कुछ कुछ मिला दिया, तो कहीं कुछ कहीं कुछ, पर बताते हैं कि उसको फन एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो वास्तव में गेंद का नदी में गिरना और फिर वो कालिया से जा, उसके लिए वहां जंप मारना, इसका भाव क्या है, कि गेंद चली गई थी हमको उसका होश भी नहीं था, लेकिन बाबा ने आके बताया कि तुम एक आत्मा हो,
पॉइंट ऑफ लाइट हो। अब हम अभ्यास करने जाते हैं, एक आध बार तो गेंद माना वो पॉइंट ऑफ लाइट दिख जाती है और फिर ओझल हो जाती है। तो कहाँ ओझल हो जाती है? अंदर भी एक यमुना नदी बह रही है, अंदर भी एक यमुना नदी बह रही है। कौन सी नदी माना ही क्या होता है? जब पानी बह रहा है, नदी माना ही जहां पानी बह रहा है। और अगर जहां किरणें बहती हो तो उसको क्या कहेंगे? किरणों की नदी, यही बोलेंगे ना, और क्या कहेंगे? ये नदी जो देखी हुई है उसमें सतत क्या बह रहा है? पानी। और कहीं सतत किरणें बहती रहती हो तो उसको क्या बोलेंगे? किरणों की नदी। पर होगी तो नदी, नदी माना ही जहां सतत कुछ बह रहा है। अब जब हम आत्माएं इस धरती पर आई तो आत्मा क्या चीज है, मन क्या चीज है, चित्त क्या चीज है, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। हम शब्द यूज करते हैं मन, न मन में न चित्त में, तो मन अलग है, चित्त अलग है या एक ही है? बात न मन में थी न चित्त में थी। चित्त की शुद्धि करो। हम सत चित आनंद बोलते हैं, सत मन आनंद बोला है क्या कभी हमने? अगर दोनों एक है तो हम बोल सकते हैं ना सत मन आनंद, जैसे हम बोलते हैं ना शिव शंकर के लिए। कभी शंकर रात्रि बोला है क्या? शिवरात्रि बोला है, तो माना दोनों में कुछ तो फर्क होगा ना। क्या फर्क है मन और चित्त में? हा? जिसको कहते हैं ना ऊपरी मन और बाह्य मन या आंतरिक मन, या ऊपरी मन या निचला मन, ऐसे ही बोलते हैं ना, लोअर माइंड अपर माइंड, या जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड, ऐसे ही कहते हैं। या फिर और अगर सरल कर दूं तो, जैसे कहा ना आजकल सभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, गूगल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, तो स्क्रीन पर जो लिखा है वो ऊपर दिख रहा है, लेकिन एंटर करा सेव किया तो फाइल सेव हो जाएगी ना, अंदर चला जाएगा ना। इतना सब सुन रहे अभी यहाँ पे है, अभी जो पॉइंट सुन रहे अभी यहाँ पे, लेकिन दूसरी पॉइंट सुनेंगे तो पहली वाली पॉइंट कहाँ चली जाएगी? ओझल हो जाती है, नहीं होती? हाँ होता है ना ऐसा। स्कूल में भी पढ़ते हैं तो क्या बोलते, आगे पाठ पीछे सब पाठ, साल भर तो पढ़ाई किया ना, फिर लास्ट में क्या होता है, पूरा याद आता है? नहीं आता है। लेकिन रिवीजन करते हैं तो कहां से रिवीजन? अंदर पड़ा है, स्क्रीन पे नहीं है, अंदर स्टोरेज में पड़ा है, वो स्टोरेज चित्त है, और बाहर जो स्क्रीन पे आता है वो मन है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो चित्त है, इस पे वो जो कहा ना सत्युग से जो हम धरा पे आ गए, अंदर एक के बाद प्रिंट कई है, और फिर द्वापर से तो बॉडी कॉन्शियस वाली, तो विकारों की वहां पे बहुत क्या हो गई है, कालीमा जमा हो गई है। विकार भी माना क्या? इच्छा ही तो है ना, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, सबने मुझे तो ये भी तो एक इच्छा है, क्रोध, मेरी बात मानो तो मेरी बात मानो, ये भी तो एक इच्छा है ना। तो इच्छाओं का, तृष्णाओं का वहां पे ढेर लगा पड़ा है, जिसको का कालिया नाग बैठा है, और सिर्फ नाग नहीं, कहा इतने सारे उसके फन है, और फन माना है जो ऊपर उठाता है। तो इतनी सारी जो अंदर इच्छाएं भरी पड़ी है ना कभी कोई इच्छा ऊपर उठ के आ जाती है। हम योग में बैठते हैं, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, आती है कुछ कुछ बातें यादें। तो उसमें यही बताया कि गेंद गिरी नदी में, और पता था पहले जो ग्वाल बाल खेलते थे, और गेंद जब जाती थी तो जैसे जैसे निकट जाते थे कि लेके आए, तो वहीं पर बेहोश हो जाते थे। तो पता चल गया था कृष्ण को कि इस यमुना नदी के पानी में विष घुल गया है, क्योंकि यहाँ काली तो तालिया सिर्फ बैठा नहीं है, लेकिन उसने पूरे उस एरिया में विष घोल दिया, और इतना विष घोल दिया है कि उस पानी की वेपर भी जो उड़ती है, वो वेपर भी जब बाष्प भी जिसको लगती है और वो उसको क्या कर देती है,
क्योंकि उसमें विष की मिलावट है, वो बेहोश हो जाते हैं। और इसके लिए कोई उपचार करना चाहिए, मतलब जब तक उस कालिया नाक को निकाल के नहीं फेंकेंगे, इसका उपचार करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर दूसरे आएंगे ग्वाल बाल खेलेंगे या दूसरे दिन आएंगे फिर वही हाल होने वाला है। इसलिए इस कालिया नाग को ही उठाकर फेंक देना है, और उसको उठाकर फेंक देना है तो अंदर जाने के लिए बहाना चाहिए ना। तो गेंद फेंक दी, ऐसा बोल दिया कि गेंद फेंकी और गेंद ढूंढने के लिए गए। तो जब गेंद ढूंढने गए तो वो वहां पे क्या कर रहे, पानी में श्री कृष्ण जाके पानी का मंथन कर रहे हैं, खूब गजगोर आवाज और बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो जब पानी को बहुत गजगोर माना तेजी से करोगे तो मंथन तो कितना गजगोर होगा, और उस गजगोर से कालिया नाग जो नदी के बिस्तरे पर, नीचे भी तो आइलैंड होते हैं ना, उस पे जो सोया हुआ था, उस गजगोर से उसकी आंख खुलती है, उसको साउंड सुनाई देती है, कौन है मेरे निवास स्थान पर आने की इतनी हिम्मत की है, और ऐसा बोल के वो उठ के अपने फन को लेते हुए ऊपर आया, नदी के सतह के ऊपर आया। ग्वाल बाल तो बाहर खड़े थे, और जो जंप भी लगाया है ना नदी में, ऐसे नहीं लगाया है, का कदंब के पेड़ पर चढ़ा, उसकी टॉप में गया और टॉप से जाके कूदा, तभी तो बहुत गजगोर आवाज होगी। और वहां से जाके कूदा है और फिर वो नाग आया है, तो इधर बाहर जो खड़े थे उन्होंने भी दृश्य देख लिया। तो नाग ने जब देखा कौन मेरे साथ इतना पंगा लेने के लिए आया, इसको दिखाता हूं, तो नाग की वृत्ति होती है शिकार कैसे करता है, अपनी पूंछ से अपना, उसका जो शरीर है एक लंबा पूंछ ही है, उसी को कुंडली बनाता जाता है, उसमें लपेटता जाता है अपने शिकार को और उसमें टाइट कर देता है। टाइट करके जिसको भी फंसा है वो लुस्त हो जाएगा ना, और फिर वो उसको फन से मुख से निगल लेता है। तो इसने भी ऐसे ही किया, इसको लपेटता गया और टाइट करता गया, लेकिन कृष्ण भी उसकी बात को समझ गया था। उसने क्या किया, उसने अपने आप को एक्सपांड किया, एक्सपांड किया तो उसकी नसें क्या होंगी, फटेगी नहीं फटेगी, तो उसको अंदाजा लग गया अभी मैंने अगर इस टाइटनेस को ढीला नहीं किया ना मेरी पूंछ ही खत्म हो जाएगी, तो उसने उसको ढीला छोड़ा। जैसे ही ढीला छोड़ा तो कृष्ण पानी में फिर से उसके पकड़ से बाहर आ गए और उस के फन के ऊपर आ गए और उसको दबाने लगे। तो पहले जो दृश्य था जब उसको लपेटा गया, सब ग्वाल बाल देखकर हाइसे में आ गए, जाके नंद बाबा को और यशोदा को बुला के लाए, कैसा अनर्थ हो गया है। और वो सब आए हैं और वो चाह रहे कि हम जाके बचाएं, लेकिन उनको फिर रोक रहे कि ये तो विषैला, जो भी जाएगा खत्म होके आएगा। लेकिन कृष्ण को एहसास हो गया था ये बाहर जो देख रहे हैं, अगर मेरे को इस कंडीशन में देखेंगे तो ये तो इनका हालत बुरा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना शरीर को एक्सपैंड किया, और एक्सपैंड किया तो उसकी मस्ती उतरी, उसको लगा कि अभी मैं ही मर जाऊंगा। उसने ढीला छोड़ा, ढीला छोड़ा तो वो उसकी पकड़ से बाहर आया, उसकी पकड़ से बाहर आया तो उसके सिर पे चढ़ गया, और वहां पे क्योंकि उसके कितने फन, सैकड़ों फन, और उस पे डांस करने लगा। एक पे डांस करके उसको नीचे करता है तो नाग दूसरा फन उठाता है, इसलिए वो दूसरे पे कूदता है। ऐसे करते करते नाग अपनी पूरी कोशिश करता है कि हर फन से ऊंचा उठा के उसको डिस्टर्ब करने का, लेकिन ये भी कूदा तो किसके साथ कूदा, तो कहा कदंब के पेड़ पर गया, पहले टॉप पर गया, इसीलिए हम कहते ये कूदना ही भट्टी में जाना था। सबसे ओझल हो गए ना, अपने घर बार से दूर होकर आए ना अभी, तो इसीलिए हमने कहा था घर बार को याद नहीं करना, जिम्मेवारियों को याद नहीं करना। जब तीन चार दिन के लिए आप सौंप कर आ ही गए हो तो उस दुनिया से जैसे कि हम मरे पड़े हैं, ऐसा मरजीवा होकर अगर हम भट्टी करें ना, सचमुच रिजल्ट आएगी। तो वो इसीलिए कहा कि उसने जंप पे मार दिया, और वो भी ऊपर जाके। तो जब आप यहां आए वो सब छोड़ के, तो हमें भी क्या करना है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर वो परमात्मा जो कल्प वृक्ष का बीज है उसके साथ कनेक्ट होकर अपने आप को पावरफुल बनाकर, फिर ये जो बीच बीच में आते हैं ना भाई योग करने बैठे 5-10 मिनट तो ठीक रहा, फिर तो ये बात वो बात याद आने लगी ना, तो वो था कि पावरफुल बने। और ये जो अंदर से एक एक बात उठ रही थी इच्छाओं के रूप में या जो भी रिस्पॉन्स वट एवर जो भी था, वो एक एक उठती है, उस पर हमें डांस करना था। कौन सा डांस करना था, क्या किया उसने, डांस कैसे किया, यहां से बंसरी जो खोची हुई थी ना उसको भी निकाला और बंसरी भी बजाया। और बंसरी किस चीज की प्रतीक है, मुरली। तो ये जो हमारी इच्छा या जो भी अंदर में भरा पड़ा वो निकल रहा था ना, हमको क्या करना था, ये ज्ञान की पॉइंट्स बार बार सिमरण में लाना था। जो मुरली क्लास में पॉइंट्स मिल रही थी उसको बार बार सिमरण में लाना था। बाबा कहते हैं स्मृति सो समर्थी, तो वो पावर आती और उस पावर से उसके ऊपर डांस चलता रहता। आखिर वो इच्छाएं, जैसे वो नाग भी क्या हुआ, पहले तो अहंकार दिखाया दिखाया इस बालक को, मैं मार के रहूंगा ये कौन होता है, क्योंकि पहले तो उसको साधारण दिखा ना, पर जैसे ही उसने लपेटा और उसने एक्सपांड किया ना अपने आप को, उसी समय उसकी अक्कल ठिकाने आ गई थी। तो यहां पर भी लपेटा और उसने कृष्ण ने एक्सपांड किया, माना हमको भी क्या करना था, वही कहा ना कि सघन योग सघन ज्ञान, ज्ञान की आंधी तूफान, इसलिए कंटिन्यूस आपको क्लासेस में रहना था। आप तो कहेंगे बाकी लोग तो इधर पट्टी करने कौन आया है, आप आए हैं ना, इसलिए आपका कर्तव्य है कि इस ज्ञान की आंधी के अंदर चलूं, उस कंटिन्यूअसली उस योग उससे कन्वेस लेंस माना एकाग्रता पूर्वक बैठकर योग करूं। चलता फिरता तो हम वहां भी कर रहे थे ना, ऐसे बैठक वाला नहीं मिल रहा था ना टाइम, क्योंकि जिम्मेदारियां भी बहुत थी ना। पर यहां क्या थी जिम्मेवारी, कुछ भी नहीं थी जिम्मेवारी। तो इसीलिए तो आपका टाइम टेबल ऐसा सेट किया था कि चार धाम अलग करो और फिर यहां पर बैठकर परम धाम भी जाओ, वो एकाग्रता वाला योग। क्योंकि बाबा कहते हैं पावरफुल याद वो याद है जिसमें मन बुद्धि दिल और शरीर चारों में स्थिरता हो, चारों में स्थिरता, वो पावरफुल योग। तभी तो डिटैच हुए ना हम बॉडी से, नहीं तो बॉडी के भान में तो है ही ना। एक होता है देह अभिमान और एक होता है देह भान, समझ में आ रही है ना बात, तो उस भान में तो है ही फिर हम। तो इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम वहां चार धाम के लिए अलग दिया था और यहां पर भी अलग दिया था कि वो भी योग करो और यहां पे भी योग करो बैठ के, और फिर ज्ञान सुनो, फिर योग, विश्राम, इश्यत, भजन और भोजन दो ही काम और कुछ नहीं। तो उससे हमारी ताकत बढ़ती, माना हम भी शक्तिशाली बने। वो था कृष्ण ने अपने आप को फैलाया, हमने ज्ञान को भरा ना, भंडार को भरते गए ना, स्टोर जो ज्ञान का स्टोर था उसको फैलाया ना, योग से जो ऊर्जा बढ़ते उसको फैलाया भरा ना। तो वो जो सांप है इच्छा रूपी विकार रूपी जो एक एक करके उठते हैं, वो आखिर क्या करते, हारते। तो जब उस सांप ने देखा अब मेरी पूरी शक्ति चली गई है, मैं और से ऐसा नहीं कर पाता हूं, फिर तो अंदर से खून की उल्टियां निकली उसकी, अर्थात जो भी विष भरा था सारा निकल गया। और वो जो जिस पर वो डांस कर रहा था कृष्ण, जनरली जब कोई भी नृत्य करता है
तो जिस प्लेटफॉर्म पर करता है वो स्थिर होता है,
स्थिर होता है ना। नहीं तो कई लोग इसलिए कहते हैं ना, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। नाचना तो खुद को नहीं आ रहा था और दोष दे दिया आंगन को कि वो टेढ़ा मेढ़ा था ना, क्योंकि नाचने के लिए सपाट होना जरूरी था। लेकिन यहां कृष्ण कहां डांस कर रहा था? सपाट था क्या उसका आंगन? जिस प्लेटफॉर्म पे वो नाच रहा था सपाट था क्या? टेढ़ा मेढ़ा। वो एक नीचे दब रहा है तो दूसरा ऊपर उठ रहा है, फिर एक नीचे दब रहा है तो फिर दूसरा ऊपर उठ रहा है। तो हम जो शिकायत करते हैं ना, बेंजी जीवन में ये बात है वो बात है, वो जब तक ठीक नहीं होगी कैसे हम योग एकाग्र होके बैठेंगे योग में? करते हैं ना शिकायत, पहले ये तो बाबा मेरी ठीक कर देना बात। पर ये लर्निंग कृष्ण लीला कालिया मर्दन की, कि बाबा हमको क्या करते, बच्चे तुमने कल्प पहले भी किया है तो इस कल्प में करना कौन सी बड़ी बात है? जो काम पहली बार करते हैं वो थोड़ा दिक्कत वाला होता है, लेकिन हमने कल्प पहले भी तो किया है ना, तो याद रखना इस दृश्य को, प्लेटफॉर्म सपाट नहीं है, सिर्फ ऊंचा नीचा नहीं है, वो भी मूवमेंट है, उसमें भी एक टेढ़ा होना अलग, पर वो भी खुद हिल रहा है, प्लेटफॉर्म खुद हिल रहा है। तो हमारे साथ यही होता है ना बहन जी, लड़के का भी ट्वेल्थ में फेल हो गया, ये डिवोर्स हो गया, ये केस चल रहा है, अब वो सारी बातें नहीं याद आएंगी बहन जी, आप बोलो कैसे मैं बैठूंगा याद करने के लिए? तो ये सब बातें जो हमारे जीवन की है, ये था मोमेंट वाला प्लेटफॉर्म, लेकिन कृष्ण ने डांस किया किस बलबूते पर? बंसरी के बलबूते पर। वो जो कदम के पेड़ पर चढ़कर मतलब परमात्मा से पहले कनेक्ट हुआ है, पावर भरी है, और फिर वो पावर भरने के बाद भी जैसे कहा ना योग में बैठे तो फिर बीच बीच में उठता है, तो उसको फिर बंसरी बजाई, और बंसरी बजाई मना मुरली का एक एक पॉइंट स्मरण में ला ला कर, वो जो हमारे उठ रहे थे इच्छाओं की और ऐसे वैसे संकल्प, उनको परास्त कर दिया। और जब परास्त कर दिया तो उसमें बताते हैं कि फिर उसने समर्पण कर लिया। तो कालिया नाग के अहंकार से समर्पण तक की यात्रा। तो हमारे अंदर भी जो विकार है, मेन तो अहंकार ही है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस अभिमान, और वहां से सब समर्पण, इनको होना ही पड़ेगा। तो हम बार बार याद करें, कल्प पहले भी तो किया है ना, कोई नई बात थोड़ी है। तो जब पूरे विश्वास के साथ करेंगे सफलता मिलती है। और वो गेंद लेकर वापस आया है, और उसमें एक बात जो कही है वो कही है कि श्याम वर्ण वाला गया था ना वहां पे जो कृष्ण था, लेकिन जब वो निकला है वहां से बंसरी बजा रहा है और उसके चेहरे पर टू मच दिव्यता है, जो रूप जाते समय था वो रूप आते समय नहीं था। क्यों? क्योंकि वो विष निकाल के फेंक दिया ना, जब विष निकाल के फेंक दिया तो दिव्यता आ गई ना। तो ये है कृष्ण के कालिया मर्दन की डांस, और वो एक अकेला कृष्ण नहीं, हर वो आत्मा जो सांवली थी, जो शुद्र थी, जो बाबा के पास आई है, जिसने बाबा से दोनों वरदान जन्मते ही ले लिए हैं, योगी भव पवित्र भव, और उस मंजिल पर चलना शुरू कर दिया है, उनको ऐसी भटिया करना बहुत जरूरी है। किया था इस भट्टी का सचमुच ऐसा ही लाभ, या थोड़ा थोड़ा बाह्य मुख हो गए थे? हाँ, मौन तोड़ दिया था, इतना इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए कि क्यों एक घंटा हमको ऐसे बिठा दिया गया है। न तो कोई कमेंट्री कराने आता था, बस लिख दिया 5 से 6 योग, कोई तो आता भी नहीं था, बिठा देते थे दो जन को, इधर से गीत बजा दिया, बाबा की ड्रिल चालू कर दी, तो शायद लगा जाके बैठना ही तो है ना, तो आधे घंटे बाद जाते। क्यों अभी तक भी, उसमें भी बताया ना कि कृष्ण जन्म लिया और जन्म से उसके जीवन में एक एक सीने आई है, और उसके बाद अभी कितना बड़ा था, छोटा ही तो था ना। तो हम भी अभी चाहे जन्म लिया है ज्ञान का, चाहे हम 5 साल के बच्चे हैं बाबा के, चाहे हम 10 साल के बच्चे हैं, हमको अपनी खोट तो नशा चढ़े इस मंत्र को पक्का करना है, न कि हर बार कोई बाहर से कमेंट्री दे। तो जब बाहर से भी कोई कमेंट्री देगा ना, तो उस समय तक तो ठीक है, और फिर लेकिन अगर मैंने खुद ही एक अभ्यास चालू किया होता तो शायद पहली बार में वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, फिर तो मेरा संस्कार बन जाता ना वो, फिर तो मेरा संस्कार बन जाता ना। तो कोई भी जब नई चीज सीखते हैं तो टोटली फोकस्ड रहना पड़ता है, ऐसे ही होता है ना। तो टोटली फोकस्ड रहने के लिए तो 3-4 दिन यहां मिले, तो भले शायद न भी समझ में आया हो कि टाइम टेबल भट्टी का ऐसा क्यों है, क्यों इतना टाइम हमें योग के लिए दिया है विदाउट कमेंट्री के, सिर्फ ऐसे ही गीत बज रहे हैं, क्योंकि अपनी घोट तो नशा चढ़े, खुद को चिंतन करना है ना, खुद को चिंतन करना है। आपके बदले मैं अगर पेट दर्द की गोली खाऊं, मैं टच भी करा दूं आपके पेट को, नहीं होगा ना। तो इसमें नहीं रह जाएं कि कमेंट्रिया सुनते रहेंगे, नहीं। और इसीलिए किस प्रकार का योग था, थोड़ा बजेगा फिर साइलेंट, वो योग करो जिस समय, तो वो भाव में हम खो जाते हैं, और जैसे ही बंद हो गया तो बातें उठना शुरू हो गई, ऐसे ही होता है ना। तो वो नाग फन उठा रहा था, लेकिन बंसरी बजाओ, ज्ञान का चिंतन करो, जो मुरली में सुना, जो यहां सुना, प्रॉमिस करो बाबा से, बाबा आपके साथ में योग भट्टी करने बैठा हूं, आपके इस वरदानी भूमि में, शक्तिशाली भूमि में, ये वो स्थान है जहां बाबा की पधरामणि कितनी बार हुई है, और आप मेरे साथ हैं, आपने कहा है मुझे यूज करो, बाबा मैं आपको यूज कर रहा हूं, आपको मुझे सफलता देनी होगी। पत्र क्यों कह रहे थे, बार बार लिखो, यही जो बातें योग में आ रही होगी या कुछ और याद आ जाता होगा, जाके बाबा को दो। ऐसे ही नहीं हम बोल रहे थे कि बार बार बाबा को पत्र लिखना, चार धाम की यात्रा करना, योग में आके बैठना, ऐसे ही नहीं कह रहे थे हम। वो सब बातें उसको देनी थी कि बाबा मैं योग में बैठता हूं, अभी भी मुझे ऐसा सब आ रहा है, बाबा ये समर्पित करता हूं मैं आपको, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं तब तक मुक्ति नहीं। तो सच्चे दिल से जो भी कमी कमजोरियां योग में बैठने में भी ऊपर ऊपर आती है, उसको बाबा के सामने बता दो, बाबा आज भी इतने वर्ष का मैं आपका बच्चा बना हूं, आज भी ये है बाबा, ये आप अपने पास रखो, मुझे तो बस आपकी मुरली ही मुरली, कहां रहती है, सदा अधरों पर रहती है। और मुरली अधरों पर रहने का मतलब ही, मुरली जो होती है ना, बंसरी जो होती है ना, काठ की लकड़ी की होती है, और वो काठ की जो लकड़ी, मतलब लकड़ी जो होती है बांबू, जब धरती में उगता है तो ऐसे होता है, लेकिन जब उसकी बंसरी बनाई और जब बजाना शुरू किया, उसका सुंदर गीत निकले, होठों पर लगाया, उसको ऐसा रखना पड़ा, ऐसा नहीं, ऐसा रखना पड़ा, और ऐसा रखना माना धरती से कनेक्शन दूर, अर्थात अभी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, अभी बाह्य मुक्ता नहीं, अब बातचीत नहीं, सिर्फ बाबा और बाबा, तब जाके अशरीरी बनेंगे, तब जाके फरिश्ता बनेंगे,
तब जाके वो दिव्यता अपने आप हमारे से रेडिएट होती रहेगी और अपने आप हमारे से वो सकाश वाली सेवा होती रहेगी। तो क्लियर हुआ, हमें भी ऐसा डांस करना है, चाहे प्लेटफॉर्म हिल रहा हो, चाहे प्लेटफॉर्म नीचे ऊपर हो रहा हो, बाबा का हाथ पकड़ा है, साथ पकड़ा है, बाबा सर्वशक्तिवान है, जीत तो मेरी होनी ही है, जब कल्प पहले हुई है तो अब क्यों नहीं होगी, हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी। इतने सुंदर विचारों के साथ जब भक्ति करेंगे, सचमुच फरिश्ता बनकर यहाँ से आप जाएंगे और लोग कहेंगे जो पहले वाले थे अभी वैसे नहीं है, इनके व्यवहार में, इनके वाणी में, इनके कर्म करने के तरीके में अब अंतर आ गया है। जो पहले दिन कहा था ना हमने, नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो भी करता है और वहां से जब निकल के आता है बदला हुआ जीवन जीता है। तो आप भी इस भक्ति से भले अब तक जो भी थोड़ी बहुत ढील रही होगी, थोड़ा सा जितना भी समय बाकी है, थोड़ा सा आपको अपने आप को नियम में बांधेंगे, गहरा योग करेंगे, ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन करेंगे, ताकि वो कालिया नाक को यहीं मार के खत्म करके, उसका विष खत्म करके दिव्य स्वरूप में इमर्ज होके फिर हम वहां जाएं। ओम शांति।